स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूँ इकबाल अहमद। तारीख 14 नवंबर और दिन गुरुवार। सबरीमला मंदिर मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास।
हमारे यही है कि ये मंदिर में बरसों से जो चल रहा है वही वो वैसे ही जाने दीजिए।
रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज।
ये सत्य की जीत है, भारत की सुरक्षा की जीत है और नरेंद्र मोदी सरकार के ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की जीत है। सत्य में जयते।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके गांगुली ने कहा अयोध्या फैसले से वो हैं परेशान।
This was the demand of those who committed this, the perpetrators who committed this crime.
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। वर्तमान में 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। 5 जजों की बेंच में से 3 ने कहा कि यह मामला 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाए। हालांकि अदालत ने पुराने फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस आर एफ नरीमन, ए एन खनविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इसराइली सेना का कहना है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी दक्षिणी इसराइल में गजा पट्टी से रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल का कहना है कि मंगलवार से अब तक 450 रॉकेट दागे जा चुके हैं। इससे पहले 2 दिनों तक टकराव के बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। इस लड़ाई में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और गजा और इसराइल दोनों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के हवाई हमले में एक ही परिवार के 8 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे थे। इस परिवार के पड़ोसी मोहम्मद माजरू ने इन हमलों पर गुस्सा जाहिर किया। वो बच्चे और देश के आम नागरिक थे, वो लड़ाके नहीं थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो निर्दोष थे और उस वक्त सो रहे थे। उस टीन के घर पर 4 रॉकेट गिरे जिससे हम सकते में आ गए, ये सामान्य नहीं है। ये थे हमले में मारे गए फिलिस्तीनी परिवार के एक पड़ोसी। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन 4th दिन भी जारी रहे। प्रदर्शनों के चलते कई इलाकों में आम जनजीवन रुक गया। विरोध प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बचने के लिए खुद को विश्वविद्यालय परिसर में बंद कर लिया और ईंट व मोर्टार के साथ छोटी दीवारें खड़ी कर दी। साथ ही हथियार के तौर पर भाले, धनुष और तीर का इस्तेमाल किया। पुलिस का आरोप है कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन पर तीर चलाए और आग लगाई। हांगकांग पुलिस के प्रवक्ता से चौनचुंग ने इन विरोध प्रदर्शनों को आतंक की ओर बढ़ता एक और कदम बताया। ये जागने का समय है। कोई भी नागरिक समाज ऐसी खतरनाक और घातक हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद से असहमति रखने वालों को चुप कराकर आज़ादी के लिए नहीं लड़ सकते। आप आतंक के जरिए लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ सकते। अगर आप अब भी दंगाइयों का बचाव करने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो असल में आप उनके एक साथी हैं। ये थे हांगकांग पुलिस के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ के एक शोध समूह डिस इन्फो लैब को 260 से ज़्यादा ऐसी नकली वेबसाइट मिली हैं जो भारत सरकार के हित में काम कर रही हैं। डिस इन्फो लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वेबसाइट भारत के फायदे के लिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। बांग्लादेश में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। प्याज की कीमत के चलते इसकी जुलाई से अब तक 4 गुना बढ़ चुकी है। इससे पहले बांग्लादेशी मंत्री ने कहा था कि सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है। बांग्लादेश में प्याज की कमी तब शुरू हुई जब भारत ने खराब फसल के बाद प्याज का निर्यात बंद कर दिया। रूस में 2013 में हुए एक विमान हादसे की जांच करने वालों का कहना है कि उस विमान को उड़ा रहे पायलट ने नकली दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस हासिल किया था। उस विमान हादसे में 50 लोगों की जान चली गई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक पायलट को विमान उड़ाने की आधारभूत जानकारी और अनुभव भी नहीं था। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 14 तारीख और दिन है गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अहम फैसले से। केरल के सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। 5 जजों की बेंच ने आज 3-2 से फैसला करते हुए इसे 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारी विरोध हुआ था और फिर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुनिए इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने आज 3-2 बहुमत के फैसले से अपने ही पिछले साल के निर्णय को एक बड़े पीठ के सामने रख दिया। पिछले साल 28 सितंबर को कोर्ट ने परंपरा को बदल दिया था और कहा था कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं भी सबरीमला मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इस पर बवाल मच गया था और महिलाओं को शारीरिक रूप से रोका गया था और मई के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था। लेकिन आज समीक्षा याचिकाओं पर कोर्ट की 5 सदस्य वाली बेंच ने बड़े पीठ को भेज दिया। इससे 16 नवंबर को शुरू होने वाला मंडल काल में क्या असर पड़ेगा? हमने ये सवाल राहुल ईश्वर जिन्होंने समीक्षा याचिका दायर की थी।
रिव्यू अगर दिया जाए तो इसका मतलब यही है कि पासवर्ड में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए रिव्यू दिया है। रिव्यू बहुत रेयर से ही रिव्यू मिलता है, तो हमें रिव्यू मिला, ये एक पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो हम जरूर जल्लिकट्टू मॉडल में शबरीमला में एक पल्लिकट प्रेयर प्रोटेस्ट और प्रेयर मीटिंग्स करेंगे और जो फेमिनिस्ट लोग ये वर्डिंग को मिसअंडरस्टैंड करके शबरीमला में इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम जरूर रेसिस्ट करेंगे।
लेकिन आज केरला के पत्तनमतिट्टा जिले के पंडलम शहर में कोर्ट के निर्णय का कोई असर नहीं दिखाई दिया। शांतिपूर्ण वातावरण के बीच कुछ लोग पंडलम शाही परिवार के महल के पास इकट्ठा हुए और मंत्रोच्चार किया। पास में कायपुड़ा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार एस ने उम्मीद जताई कि बड़े पीठ के सामने ये मामला जाने से परंपरा की जीत दूर नहीं होगी।
बहुत संतुष्ट है, बहुत खुशी है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम जितना डिवोटेड है, जितना हमारे आशा रखा था, हमारा आशा का फल दे रहा था। ये जो वर्डिक्ट जो आया आज का, हम बहुत आशा कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में सही रास्ता में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है हमें बहुत संतुष्ट है, अच्छा है, आगे टाइम में भी अच्छा ही होगा।
प्रमोद कुमार की भावनाएं शहर के दूसरे लोग भी दोहराए पर ऑन द रिकॉर्ड बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनमें से एक महिला जीजी बीनू ने कहा,
हमारे यही है कि ये मंदिर में बरसों से जो चल रहा है वही वो वैसे ही जाने दीजिए, उसमें लेडीज को उतावट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अयप्पन को मिलने के लिए तुमको वेट करना है तो तुम वेट करो, वही हमारा कहना है। हमको इससे वहाँ पे जो पुराना जैसा चल रहा था वैसे की वैसे चलने दीजिए, हमारा ऐसा।
आज के फैसले के बावजूद ये स्पष्ट हो गया है कि 10 और 50 साल के बीच की महिलाएं इस मंडला सीजन में भी कोशिश करेंगे सबरीमला मंदिर पहुँचने के लिए। मतलब ये कि यहाँ फिर से तनाव का माहौल बना रहेगा। इमरान कुरैशी, BBC, पंडलम, पत्तनमतिट्टा, केरला।
लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर पुनर्विचार याचिका बड़ी बेंच को भेज दी, वहीं दूसरी तरफ रफाल विमान सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने दाखिल की थी। इनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें फ्रांस की कंपनी दसाओ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र सरकार के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद,
आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले में रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है। ये सत्य की जीत है, भारत की सुरक्षा की जीत है और नरेंद्र मोदी सरकार के ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की जीत है। सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से माफी मांगे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे।
लेकिन कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पूरा फैसला पढ़े बगैर खुशी मना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री देश को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब राफेल के आपराधिक जांच का दायरा खोल दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संवैधानिक वजहों से सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हो सकते हैं, न कि जांच एजेंसियों के। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जस्टिस जोसेफ ने रफाल घोटाले की जांच के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने जेपीसी के गठन की मांग की है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को माफ कर दिया है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि आगे वो अपने शब्दों का ख्याल रखें। दरअसल राहुल गांधी रफाल मामले में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले करते रहे हैं। उन्होंने एक भाषण में कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसी को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कहा था कि राहुल गांधी ने कोर्ट का अवमानना किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी। कोर्ट के आज के फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था,
मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मा गर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था, और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफी मांगी थी, क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका।
उधर राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाली बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी का कहना था,
साफ जाहिर है कि कोर्ट ने कहा है कि ये गलत किया है, ये कंटेमनर है, कंटेमनर शब्द इस्तेमाल किया, यानी इन्होंने कंटेम्प्ट किया, ऐसा कोर्ट ने माना है। लेकिन तीन बार बदल बदल के तीन बार माफीनामा देना पड़ा, आपको याद है, तो माफीनामे की नजर से उन्होंने कहा है कि बेहतर जो सेंस है वो प्रिवेल करेगी, यानी थोड़ा सद्बुद्धि से ये काम करेंगे आने वाले समय में। इस हिदायत के साथ इनको छोड़ा है।
तो राहुल गांधी की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस ए.के. गांगुली ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कई मामलों पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मस्जिद तोड़ने वालों की ही मांग पूरी हो गई है। बीबीसी की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा ने उनसे खास बातचीत की और सबसे पहले यही पूछा कि आखिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों एतराज है।
I'm disturbed the way the judgment has gone. What we have seen is that a mosque which was standing there for the last almost 450 years or 500 years has been demolished.
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। हम सब ने क्या देखा, बाबरी मस्जिद लगभग 450 सालों से वहाँ थी और वो मस्जिद तोड़ दी गई, और ये इतिहास की कोई घटना नहीं थी। हम सब ने इसे टीवी पर खुद देखा है, इसे लेकर आपराधिक मुकदमा भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच समेत तीन फैसलों ने भी मस्जिद तोड़े जाने को अवैध कहा है और इसकी आलोचना की है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ठीक उसी जगह को रामलला यानी हिंदू पक्ष को दे दिया जाए, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ पहले कोई मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये तो पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति यह है कि विवादित जमीन देने का आधार पुरातात्विक साक्ष्यों को बनाया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि पुरातात्विक सबूतों से जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किस आधार पर जमीन दी गई। यात्रा वृतांत सबूत नहीं हो सकता, इतिहास भी सबूत नहीं हो सकता। यहाँ तो मस्जिद पिछले 500 सालों से थी, और जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से वहाँ मस्जिद थी। संविधान के आने के बाद से सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, अल्पसंख्यकों को भी अपनी धार्मिक आजादी मिली हुई है। अल्पसंख्यकों का ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करें।
कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम preach and practice religion to every member, every Indian.
क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले की जो सुनवाई चल रही है अभी भी उस पर इस फैसले का कोई असर पड़ेगा?
Well, I am not an astrologer. I don't know what will happen. Should the demolition case should go on independently of this? I hope and pray. But as of present advice,
मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ. मुझे नहीं पता क्या होगा. मैं आशा करता हूं और दुआ करता हूं कि बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का केस स्वतंत्र रूप से चलता रहे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस घटना की घोर भर्त्सना की है और उसे करना भी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना एक ऐसा अपराध था जिससे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आघात पहुंचा है. अपराध हुआ है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं. सिर्फ ये तय करना बाकी है कि यह अपराध किसने किया है. अब आप वो जमीन हिंदू पक्ष को दे रहे हैं और उसके आधार क्या हैं? पुरातात्विक सबूत, यात्रा वृतांत और आस्था. तो क्या आप आस्था को आधार बनाकर इस तरह के गंभीर मामले में फैसला देंगे? एक आम आदमी इसे कैसे समझेगा, खास करके वो लोग जो कानून का दांव पेंच नहीं समझते हैं. लोगों ने यहाँ वर्षों से एक मस्जिद देखी, अचानक से वो मस्जिद तोड़ दी गई. ये सबको हैरान करने वाला था. ये हिंदुओं के लिए भी झटका था. कोई सच्चा हिंदू मस्जिद नहीं तोड़ना चाहेगा. मस्जिद तोड़ दी गई और अब कोर्ट ने वहां मंदिर बनाने की अनुमति दे दी है. जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी उनकी तो यही मांग थी और वो मांग पूरी हो गई है. दूसरी तरफ बाबरी विध्वंस के मामले पेंडिंग हैं. जिन्होंने कानून व्यवस्था तोड़ी और संविधान के खिलाफ काम किया उन्हें कोई सजा नहीं मिली और विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का फैसला आ गया.
भारतीय गणराज्य के लिए इस फैसले का क्या असर पड़ता आपको दिखता है?
इस फैसले से जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं. लोग इसका फैसला करेंगे. लेकिन कानून का एक छात्र होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों का पूर्ण सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस फैसले से संवैधानिक मूल्यों में जो मेरा विश्वास है उसे आघात पहुंचा है.
ये थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके गांगुली और उनसे बात कर रही थी बीबीसी भारतीय भाषाओं के संपादक रूपा झा.
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर.
और अब चलते हैं बनारस. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरएसएस के झंडे के कथित अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने बीएचयू की दक्षिण परिसर शाखा की डेप्यूटी चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसके बाद डेप्यूटी चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है. क्या है पूरा मामला बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र.
मिर्जापुर जिले के बरगछा में बीएचयू की दक्षिण परिसर ब्रांच है. दो दिन पहले आरएसएस की शाखा लगाने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की कि विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी चीफ प्रॉक्टर किरण दामले ने आरएसएस के झंडे का अपमान किया और झंडा वहां से हटवा दिया. परिसर में इसे लेकर हंगामा हुआ. शिकायत पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने दामले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली. मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह कहते हैं,
बीएचयू के साउथ कैंपस में जो विगत 7 सालों से संगठन द्वारा वहाँ कार्यक्रम होता था प्रातः काल में, तो एक डिप्टी चीफ वार्डन पर आरोप है कि उन्होंने ध्वज को उखाड़ दिया और उसके साथ इंसल्टिंग व्यवहार किया. इसको लेकर के लोग आंदोलित थे. पुलिस गई समझा बुझा करके जो दिए गए तहरीर के आधार पर डिप्टी चीफ वार्डन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है. तहरीर मिली, मुकदमा पंजीकृत हो गया, जाँच पड़ताल की जा रही.
पुलिस ने यह केस कुछ छात्रों और आरएसएस के कुछ प्रतिनिधियों की शिकायत पर दर्ज किया है. आरोप है कि कुछ छात्र आरएसएस की शाखा लगाने के बाद योग कर रहे थे, लेकिन उसी समय डिप्टी चीफ प्रॉक्टर ने वहां पहुंचकर झंडा उतार कर फेंक दिया और शाखा लगा रहे लोगों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी. जबकि डिप्टी चीफ प्रॉक्टर किरण दामले इन आरोपों को निराधार बताती हैं. बीबीसी से बातचीत में वो कहती हैं,
मैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूं यहां. 12 तारीख की सुबह मैं अराउंड 6:30 में ग्राउंड पे पहुंची, तो ग्राउंड पे कॉर्नर पे मुझे एक ऑरेंज कलर का फ्लैग दिखा, तो मैंने अपने अटेंडेंट से पूछा कि भाई ये फ्लैग किसने लगाया. वैसे 144 लागू है पूरे यूपी में, तो हम लोग प्रिकॉशन लेके चल रहे कि ऐसा कुछ हमारे कैंपस में इंसिडेंट ना हो. फिर मैंने वहाँ आवाज लगाई, बच्चे खेल रहे थे, कुछ योगा कर रहे थे, मैंने बच्चे आपका है क्या करते हो? कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने उसको उठाया अपने अटेंडेंट को दे दिया, तो बोले कि कोई मांगने आएगा तो इसको रिटक कर देना करके। अब मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वो आरएसएस का झंडा है।
मंगलवार को छात्रों के धरने प्रदर्शन के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन केस दर्ज होने और दामले के इस्तीफा देने के बाद इसका राजनीतिकरण भी होने लगा। आरएसएस के जिला कार्यवाह चंद्रमोहन कहते हैं,
बहुत पहले से जहां शाखा लगता आ रहा है और मालवीय जी का अंतिम इच्छा था कि हमारे जहां भी कार्य है वहां शाखा लगना चाहिए, उनके इन्होंने पुण्यतिथि के दिन आत्मा को इन्होंने कष्ट पहुँचाया, इसीलिए निंदनीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता।
वहीं किरण दामले कहती हैं कि आरएसएस की शाखा यहाँ काफी दिनों से लग रही है और वो बिना किसी अनुमति के ही लगती है, बावजूद इसके उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। दामले की माने तो इस मामले को बीएचयू के छात्रों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने तिल का ताड़ बनाया।
शाखा लग रही पर उस पर्टिकुलर स्टेडियम पे नहीं लग रही है, बच्चे जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे वो लगाते हैं अपना, हम खुद उनके प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं, बट फ्लैग इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये मुझे नहीं पता था और इसी का इशू ये लोग बना रहे हैं। बच्चों को बुलाया, बच्चे कन्विंस थे, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, बट जो बाहर के लोग हैं वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप करिए आप करिए।
इस बीच बीएचयू प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किरण दामले का इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और बनारस से अब चलते हैं बिहार। बिहार के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। दशकों से मानसिक बीमारी से जूझ रहे वशिष्ठ नारायण सिंह ने 74 साल की उम्र में पटना में आखिरी सांस ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। वशिष्ठ नारायण सिंह का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। उनका जीवन नासा में काम करने से लेकर गुमनाम होने तक काफ़ी दिलचस्प रहा। तकरीबन 40 साल से मानसिक बीमारी स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनामी का जीवन बिता रहे थे, लेकिन किताब, कॉपी और एक पेंसिल उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पटना में उनके साथ रह रहे भाई अयोध्या सिंह ने कहा था कि अमेरिका से वो अपने साथ 10 बक्से किताबें लाए थे जिन्हें वो पढ़ा करते थे। बाकी किसी छोटे बच्चे की तरह ही उनके लिए 3-4 दिन में एक बार कॉपी पेंसिल लानी पड़ती थी। और आज है गुरुवार, यानी आपकी चिट्ठियों के जवाब का दिन।
आपकी राय में आज आपकी चिट्ठियां और ईमेल लेकर स्टूडियो में मैं हूं वंदना, और मेरे साथ पिछली बार की तरह है सूर्यांशी।
नमस्कार। और आज की पहली चिट्ठी भी और कई सारे ईमेल्स भी एक ही कार्यक्रम को लेकर आए हैं और एक ही प्रस्तुतकर्ता के लिए आए हैं जिनका नाम है दुनिया जहां कार्यक्रम, और मानसी दास ने इसमें अपनी प्रस्तुति की थी और कई लोगों को ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई थी। चिली सरकार पर उन्होंने दुनिया जहां बनाया था। तो लक्ष्मण दास शर्मा मंडलाना नारनौल हरियाणा से लिखते हैं कि पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने दुनिया जहां को बनाया और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया। दीपंकर सिंह बुंदेल चौक करिहार से लिखते हैं और ये भी दुनिया जहां की ही तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं अशोक कुमार
ईमेल भी है।
हाँ, अशोक कुमार ठाकुर मालीटोल अदलपुर से दरभंगा बिहार से लिखते हैं और ये भी दुनिया जहां की तारीफ कर रहे हैं।
उन सारे लोगों का जिन्होंने दुनिया जहां को पसंद किया है जो मानसी दास ने प्रस्तुत किया, उन सबका शुक्रिया। लक्ष्मण जी हैं, दीपक जी हैं, जाहिर सी बात है कि काफी चिल्ली पर सुनना क्योंकि अक्सर वहाँ के बारे में बात कम होती है, तो इसलिए मुझे लगा शायद लोगों को वो ज़्यादा पसंद आया। और मानसी ने भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको प्रस्तुत किया, और एक हमारे एक जो श्रोता हैं उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार किसी महिला के आवाज़ में सुना, शायद सही बोल रहे, बहुत कम बार ऐसा हुआ है। मुझे एक बार याद है कि मैंने एक या दो बार किया है कुछ साल पहले, लेकिन ज़्यादातर सही बात है कि ज़्यादातर हमारे पुरुष साथी करते आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें चिट्ठी लिखने के लिए।
हाँ, और आकाश राज पटना कॉलेज पटना से लिखते हैं कि सोमवार झारखंड से प्रस्तुत रवि प्रकाश की रिपोर्ट दिल को छू गई, उनके प्रस्तुतिकरण का अंदाज बहुत ही अच्छा था।
जी, अभी तो झारखंड में काफ़ी कुछ घटनाक्रम चल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम रवि तक पहुँचाएंगे आपकी बात। और चुनाव भी आने वाले हैं, झारखंड में, तो जाहिर सी बात है और तमाम और मुद्दे और रिपोर्ट्स हम लगातार आपके तक लेकर आएंगे आने वाले दिनों में।
और मोहम्मद शाहिद द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां भी कई लोगों को पसंद आया है, जिसमें गणेश प्रसाद ध्वजदार लिखते हैं कि स्पेन और इसके राजनीतिक संकट के बारे में दुनिया जहां में सुना, बहुत अच्छा लगा। और यही एक बड़ा ही दिलचस्प खत आया है, जंग बहादुर सिंह ने लिखा है जमशेदपुर से। इनके इन्होंने जैसा लिखा है,
पुराने श्रोता है, लगातार लिखते हैं,
और इन्होंने जैसे लिखा है मुझे लगता है वैसे ही पढ़ने में मजा आएगा। इन्होंने कहा है, जो सोचो वो होता नहीं, जो होता है वो सोचा जाता नहीं। जी हाँ, 13 नवंबर को दुनिया जहां का विषय मैंने चुन लिया था, वो था ब्राजील में जारी 11वां ब्रिक्स समिट, मगर नहीं, मोहम्मद शाहिद जी को कुछ और ही मंजूर था। वे हमें घुमाने ले गए स्पेन के राजनीतिक गलियारों में, और क्या बेहद खूबसूरती से घुमाया
जी। इन्होंने तो एकदम फलसफा दे दिया है जिंदगी का, कि जो सोचो वो होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कभी कभी कि मन का ना हो तो भी अच्छा होता है। तो आपको इसी बहाने स्पेन के बारे में जानकारी मिली, बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए।
आगे किशनगंज बिहार से गौतम दत्ता लिखते हैं, ये कह रहे हैं कि कल बुधवार की शाम की सभा नहीं सुन पाया, परंतु आज दुनिया जहां में मोहम्मद शाहिद को सुनकर वह कमी भी पूरी हो गई, और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी आवाज बेहद मधुर है।
जी जी शुक्रिया, ये ईमेल था,
ये ईमेल था
जी।
और आगे अगर बढ़े तो एहसान असगर मलकापुर से लिखते हैं कि हमारे प्रदेश के घटनाक्रम पर बीबीसी मराठी के साथ नागेश जी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, संजीव जी की कमी काफी हद तक पूरी कर ली है।
मैं बहुत पक्के तौर पे नहीं कह सकती, पर शायद ये बीबीसी मराठी के हमारे साथी हैं मयूरेश, उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो रेडियो कार्यक्रम में आ रहे हैं, और क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी गहमा गहमी है, उठा पटक चल रही है, तो शायद ये वहाँ की बात कर रहे हैं। तो जी जी बिल्कुल सही बोला आपने, अब बीबीसी जो परिवार है काफ़ी बड़ा है, इसमें दूसरी भाषाएं भी शामिल हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है श्रोताओं को भी। तो ये तो थी आज की चिट्ठियाँ और ईमेल। तो अब सूर्यांशी समय इतना ही है, तो अब हम जाते जाते पता बता देते हैं एक बार।
और पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी पहले टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम महज 58.3 ओवर में 150 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए। चेतेश्वर पुजारा 43 और मयंक अग्रवाल 37 क्रीज पर मौजूद हैं। इस तरह पहली पारी के आधार पर विराट की कप्तानी में भारतीय टीम महज 64 रन पीछे है। टीम इंडिया का एकमात्र विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज रोहित के रूप में टीम को पहला झटका लगा। अबू जायद ने रोहित को लिटन दास के हाथों कैच आउट किया। वहीं मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। क्या कहना है अपने इस प्रदर्शन पर मोहम्मद शमी का, सुनिए।
दिमाग में एक ही चीज रहती है कि हाँ कंडीशन क्या है, किस सिचुएशन क्या है, सारी चीजें देखकर अपनी लाइन और लेंथ पर फोकस करता रहता हूँ हमेशा, और यही सोचता हूँ कि जितना टाइट लाइन डाल सकूँ और जितना भी अपने प्लान पर स्टिक कर सकूँ वो मेरे लिए बेटर है और वो टीम को भी।
भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों इस टीम को दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम कहा जाता है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी रेखा। और चलते चलते एक बार फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। वर्तमान में 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। इसराइली सेना का कहना है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी दक्षिणी इसराइल में गजा पट्टी से रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल का कहना है कि मंगलवार से अब तक 450 रॉकेट दागे जा चुके हैं। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन 4थे दिन भी जारी रहे। विरोध प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बचने के लिए खुद को विश्वविद्यालय परिसर में बंद कर लिया और ईंट व मोर्टार के साथ छोटी दीवारें खड़ी कर दी। यूरोपीय संघ के एक शोध समूह डिसइन्फो लैब को 260 से ज्यादा ऐसी नकली वेबसाइट मिली है जो भारत सरकार के हित में काम कर रही है। بنگلہ دیش میں پیاز کی قیمت ریکارڈ استر پر پہنچ گئی ہے۔ پیاز کی کمی کے چلتے اس کی قیمت جولائی سے اب تک 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
تو دن بھر کی یہ سبھا یہیں سماپت ہوتی ہے۔ آج اسٹوڈیو کی ذمہ داری سنبھالی شاکر عالم نے۔ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل صبح 6:30 بجے کارکرم نمسکار بھارت میں، لیکن اقبال احمد کو اب دیجیے اجازت۔ نمسکار۔